हम लोग आयत नंबर 130 से लेकर 134 तक तफसीर कर चुके हैं। इस सबक के अंदर जो कुछ पढ़ा है उसको चंद जुमलों में बोलकर अब हम बात करेंगे आयत नंबर 135 से। पारे का आखिरी रुकू भी है, आखिरी सबक भी है हमारा पारा वन का। अल्लाह ताला ने पूरे पारे में माजी के मुसलमान यानी यहूद का तज़किरा किया। तीन दफ़ा उनसे अल्लाह सुबहाना ताला की नेमतों की जो तस्कीर थी उसका ख्याल दिलवाया, फिर उनकी तारीख की बहुत सारी झलकियाँ दी। अब इस सबक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से चुना। इससे पिछले सबक में हमने देखा था कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी अल्लाह ने उसकी कदर की, जो इम्तिहान उन पे पड़ा उन्होंने उसको कबूल किया। तो इस सबक में शुरू में ये बात कह दी गई कि वमई यरगबु अन मिल्लत इब्राहीमा, यानी रगबत की बात थी। अगर लफ्ज़ रगबत को देखे तो अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ रगबत है उर्दू में भी ऐसे ही है। दो मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं रगबत के लिए, एक तो यही है रगीबा और दूसरा है तनाफुस। रगबत किस चीज़ को कहते हैं? किसी चीज़ के हसूल की दिल से ख्वाहिश रखना और इसके लिए कोशिश करना। मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछिए, क्या मेरे भी दिल में रगबत है मिल्लत इब्राहिमी को कबूल करने की? तो इधर आपने क्या देखा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना उसमें सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, उसके बाद कोशिश भी है, तनाफुस भी आ सकता था। ये आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला, सूरत मुतफ़फ़ीन में आता है कि वफ़ी ज़ालिका फल यतनाफ़सुल मुतनाफ़िसून। तो तनाफुस में कुछ और रग़बत होती है, लेकिन यहाँ ये बात कहकर मुझे आपको अल्लाह ताला ने इस चीज़ की ख्वाहिश दिलाई कि हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो फिर उसके लिए कोशिश भी करें। उसके बाद फ़िरका वारियत की बात थी, वहाँ से ही आज की बात का सबक शुरू होगा कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को भी लफ्ज़ मुसलमान ही दिया था। हर दौर के लोग मुसलमान थे, हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग भी मुसलमान थे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और उसके बाद के बेहतरीन ज़माने, करन करन यानी ताबईन, तबा ताबईन, सब ने खुद को मुसलमान ही कहलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को किसी उम्मती के नाम से अपने आप को जोड़ने या उससे रहनुमाई लेने की ज़रूरत आती तो सबसे पहले इसका हक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो को था। फिर उनके दो साल के बाद लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो से जुड़ते, या इसी तरह से। ये सब नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने यहूदो नसारा को बीच में हज़रत याकूब की अपने बच्चों को जो वसीयत की गई थी वो याद दिलाते हुए ये पैगाम दे दिया कि तिल का उम्मत उन कद खलत लहा माँ कसबत वलकुम माँ कसबतुम। असलाफ़ पे, बुज़ुर्गों पे और जो भी हमारे बड़े गुजरे हैं उन पे नज़रें लगाने और ख़ुद अमल छोड़ देने की बजाय अपने अमल की फ़िक्र करो। आज अगर आप देखें तो मुसलमानों के बहुत सारे गिरोह क्या कहते हैं कि देखो जी, हम कहाँ अपने अमलों से जन्नत में जा सकते हैं, फिर कौन कैसे जाएंगे? कहते हैं जी वो फलां बुज़ुर्ग है, आप उनकी नज़र दें, न्याज दें, उनके उर्स मनाएं, आप उनके साथ कुछ अकीदतें रखें तो कल वो आपको जन्नत में ले जाएंगे। अगर इस जुमले को आपने कभी थोड़े से लफ्ज़ों के फ़र्क के साथ सुना रखा है तो उसको ज़रा से जहन में ला कर आप इस जुमले को अगले को जो आज के सबक के साथ हम पढ़ेंगे सुनिएगा कि अगर सिर्फ नस्बत काम आती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नस्बत तो किसी की नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी मुबारक में अपनी अजवाज मुतहरात को क्या कहते थे? सोई रहो बिस्तरों पर, मैं हूँ ना तुम्हारा शौहर, कल बख्शिश करा दूँगा तुम्हारी। हालांकि रिवायात में एक से ज़ायद चीज़ें हमें मिलती हैं कि आप रातों को जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो अपनी बीवियों के बारे में कहते थे कोई इन हुजरे वालियों को उठाए, उठो अमल करो, कल क़यामत के दिन ये सोच लेकर ना आना कि हमारा शौहर हमें अल्लाह से बचा लेगा। फुफियों के नाम लेते या सफ़िया, अपनी बेटियों को कहते या फातिमा बिनत मोहम्मद एम अली, उठो अमल करो, कल ये सोच के ना आना कि तुम्हारा बाप तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। तो याद रखिएगा कि इंशाल्लाह नस्बतें हमें फ़ायदा देंगी, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक भी फ़ायदा देगा, नेक लोगों की सोहबत भी हमें फ़ायदा देगी। कब? जब हमारा अपना भी अमल होगा। हम खुद नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें हमारे बच्चों की नमाज़ें भी फ़ायदा देंगी। याद रखिए, बहुत सिक्योर होता है वो बंदा जो खुद नेकी करे और अपने बच्चों को नेकी की नसीहत करता रहे। कल आपके बच्चे नेकी करेंगे, आप और मैं पता नहीं उस वक्त दुनिया में होंगे भी नहीं, लेकिन आपके बच्चों की नेकियां आपको मिलती रहेंगी। इसके बरक्स बड़ी अहम बात कहने लगी हूँ, तवज्जो से सुनने वाली है। अगर हमें अपने बच्चों की वो फिक्र नहीं है जो हज़रत याकूब को थी और हज़रत इब्राहिम और बाकी अम्बिया को थी, और बाद में किसी और तरीके से औलाद नेक हो भी गई, हमने कोशिश नहीं की, हमने तो उनको खूब दुनिया कमाने पे लगाया, लेकिन हमारे बाद कोई झटका पड़ा या उनको कोई नेक सोहबत मिल गई और वो नेक हो गए, तो हमें नहीं पता कि कल वो हमारा सदका जारिया होंगे या नहीं होंगे। वन अलैसा लिल इंसानी इल्ला मासा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की है। तो ये सबक हमें ये बताता है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करनी है। हम सब ये कहते हैं हम मर गए तो कल क्या होगा, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। इस सोच को बदलिए, इस सोच में ढालिए कि हमारे बच्चों के दुनिया से जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। और हमने ये भी देख लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्होंने चूँ चरानी की, चल पड़े। अल्लाह ताला ने कह दिया तिलका उम्मतन कद खलत, वो जो थे वो चले गए, नेक लोग थे, नेकियां कर गए। अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्ला बहुत नेक थे, वो नेकियां कर गए। इसी तरह से आप कितने नामों को लोगों के नाम से सुनते होंगे, दाता हजवेरी जिनको लोग कहते हैं, अली हजवेरी साहब, वो गुजर के चले गए नेकियां करके। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला तिलका उम्मतन कद खलत, वो नेकियां करके चले गए। इमाम अबू हनीफा चले गए, इमाम शाफी चले गए, इमाम मालिक चले गए, इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला चले गए, वो तो करके चले गए। लहा माँ कसबत, जो नेकियां उन्होंने की वो उनकी थी। वलकुम माँ कसबतुम, यहाँ नोट कीजिएगा। बस दफ़ा हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें माँ बाप से विरसे में दौलत मिल जाती है ना, इस तरह नेकी भी मिल जाएगी, तो नेकियाँ विरसे में नहीं मिलती। सॉरी, बस दफ़ा बच्चे कुछ नहीं करते, नखट्टू होते हैं, बाप का इंतकाल होता है, करोड़ों की ज़मीनें उनके नाम पे लग जाती हैं। अब उसमें आप कह भी नहीं सकते कि ये बच्चा नालायक है, इसको ना देना, ये अल्लाह का हक है, अल्लाह ने दे दिया। लेकिन नेकियों में या जन्नत में विरसा नहीं चलेगा, जो आप करेंगे आपके लिए, जो मैं करूंगी मेरे लिए। अच्छा, ज़रा सी इस एक आयत की लफ्ज़ों पे तवज्जो दिलाना चाहूंगी। लहा माँ का सबत, हा क्या मुअन्नस, उसके लिए यानी उस एक औरत के लिए वो है जो उसने कमाया, वलकुम माँ का सब तुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। मैंने किसी के मुंह से इस एक आयत के बारे में क्या सुना, आप ज़रा नोट कीजिएगा। जो प्यारे में हमने पीछे देखा कि यहूद के उलमा में एक ख़राबी जो आई थी कि वो कुरान की आयतों को या तौरात की आयतों को, अपने ज़ुबान में कही उनकी, तौरात की आयतों को मन माने मानी पहनाते थे। अब इस आयत के अंदर बात तो समझ आ गई है ना आपको, लहा की मुअन्नस उम्मत के लिए और कुम के लिए तुम हो। वहाँ इसकी तफसीर क्या लोग करते, देखो इस्लाम कहता है औरत अपना खुद कमाए, टू इनकम फैमिली ज़रूर होनी चाहिए। कहाँ लिखा लहा माँ का सबत, औरतों को अल्लाह कह रहा है जो तुम कमाती हो तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए हैं, वलकुम, और जो तुम्हारे शोहर कमाते हैं तुम्हारे लिए। कोई तुक बनती है इस तफसीर की, कोई पीछे पैसों की बात थी। और एक जुमला नोट कीजिए, कुरान में जहां भी लफ्ज़ कसब आया है ना, इल्ला कोई एक जगह हो तो हो मुझे नहीं याद, हमेशा आखरत की कमाई के लिए आया, दुनिया की कमाई के लिए फजल का लफ्ज आता है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तफसीरें और अधूरा इल्म लेकर आधी बात सुनी आधी बात ना सुनी कर करा के लोग अपने आप को इस तरीके से अपने अंदर जहां मर्जी ले जाएं, अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर करने की ज़रूरत है। अब अगली आयत में आप देखिएगा, वकालू कूनु हुदन, और उन्होंने कहा हो जाओ तुम यहूदी। किन्होंने कहा? यहूद ने कहा। यहूद क्या कहते? तुम हो जाओ यहूदी। अच्छा, अव नसारा या नसरानी, ये किसने कहा? ये ईसाइयों ने कहा, शाबाश। यहूद कहते हैं तुम यहूदी बन जाओ, नसारा कहते हैं तुम नसरानी बन जाओ, तो क्या होगा? तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। इस एक जुमले को आप जरा सा अपनी आंखों के अंदर रखिए, यहूद कहते हैं हिदायत पे होने का एक ही मियार है कि तुम खुद को यहूदी कहलाओ, और नसारा भी यही बात कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुल, कह दीजिए, बल बल्के, यानी ये ठीक नहीं है जो ये कह रहे हैं, बल क्या, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, दीन इब्राहीम जो हनीफ थे। यानी ना तो खुद को यहूदी कहने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, ना खुद को नसरानी कहने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, बल्कि दीन हनीफ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शियार था उसको मानने से। अब देखिए, बल क्या, बल के बाद कुछ लफ्ज आना चाहिए था ना, नत तबे, पैरवी करो मिल्लत इब्राहिम की। लफ्ज नत तबे मखजूफ है, मानी में है कि यहूदियत और नसरानियत से नस्बत जोड़ने से फायदा नहीं होगा, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलना पड़ेगा जो कि हनीफ थे, तो फिर तुम जन्नत में जाओगे। आप जरा से इस आयत को देखिए और साथ ही आखिर में कह दिए, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो तो मुशरिकों में से नहीं थे। फिरका वारियत का रथ। आप इस एक आयत को आज मुसलमानों के सिनेरियो में देखिए। आज मुसलमानों में से वो लोग जो ये कहते हैं किसी एक फिरके से ज़रूर खुद को जोड़ो, किसी एक मसलक और जमात के साथ तो निस्बत होनी चाहिए, तो वो क्या कहते हैं? आप लफ्ज़ कूनू के आगे आप तीन चार ऑप्शंस लगाएंगे, जो मारूफ आप मैं बोलूंगी तो आपने भी सुनी हुई है, जब से पैदा हुए हमने यही कुछ सुना है। कालू कूनू हनीफियन औ मालिकियन तख्तदु, तुम हनफी बन जाओ तो हिदायत पाओगे, मालकी कहते हैं मालकी बन जाओ, शाफई कहते हैं तुम शाफई बन जाओ, ब्रेलवी कहते हैं तुम ब्रेलवी बन जाओ, देवबंदी कहते हैं तुम देवबंदी बन जाओ, फिर हिदायत पाओगे। क्या आज आपको अपने मुल्कों में ये आवाज़ें नहीं सुनाई देती? शिया बन जाओ हिदायत पाओगे, सुन्नी कहते हैं सुन्नी बन जाओ हिदायत पाओगे। हर फिरके हर मज़हब ने लोगों को अपने नाम के साथ जोड़ने की ख्वाहिश रखी, हालांकि बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपका दीन क्या है, तो आपने फरमाया कि अना आला दीनी मिल्लत इब्राहिम। तो याद रखिएगा, सारी फिरका वारियत की जड़ कट जाती है सिर्फ इस एक आयत पे गौर करने से। मेरा आपका काम क्या होना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपनी निस्बत को जोड़ें और सब की इज्जत करें, सब का एहतराम करें। जो लोग आज तक दीन के नाम पे खिदमतें करके गए, तकवा अख्तियार किया, तौहीद का प्रचार किया, जिनकी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी, आप सबकी रिस्पेक्ट करें। एक के नाम के साथ जुड़ के दूसरे को गलत कहना और मस्जिदों पे हमले करना और शिया सुन्नी फसादात का नाम कहना, मुहर्रम के महीने में आप सगे बच्चे को नहीं कह सकते कि दफा हो जाओ, नहीं, आप गुस्से से नहीं कह सकते, इज्जत जान माल वे आप गीबत नहीं कर सकते मुहर्रम में किसी की, थप्पड़ नहीं मार सकते आप किसी को, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, कि इसका तकद्दस रमजान से भी ज्यादा है इस मामले में। लेकिन आप देख लीजिए आज मुसलमानों का हाल क्या है। वहदत उम्मत का एक ही सिरा है कि सब को वा तसिमु बिहब्लिल्लाह जमिया, सब अल्लाह के इस कुरान की रस्सी को थाम लें। जो लोग छोटी छोटी जमातों और ग्रोहों में बटे हुए हैं ना, तो वो कुरान तक तो पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। लोग कहते हैं ये तो आम लोगों के पढ़ने की चीज़ ही नहीं है। सूरह आले इमरान में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पढ़ेंगे। इस कुरान को इतना आम कर दो। देखिए मैं भी समझूँ, आप भी समझिए, मैं आपसे कहूँ कुरान का कोई मसला पूछना ना मेरे पास आना, बच्चों की शादी करानी है ना मुझे बताना, मैं किसी को भेज दूंगी, और कोई फौत हो गया ना हैं एक मौलवी साहब आएंगे जनाजा पढ़ा देंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। आमीन करानी है बच्चे की, मौलवी साहब आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह करानी है, आमीना है, तो ये बेचारे आम लोग क्या करें? वो फिर दीनदारों के पीछे फिरेंगे ना, ये दीन का मिजाज नहीं। नबी सल्लम ने अपनी बेटियों के निकाह खुद पढ़ाए, फौत होती थी उनके जनाजे खुद पढ़ाते थे। आज हम मुसलमानों में और खासतौर पर इंडो पाक मुसलमानों में कितने लोग हैं, अल्लाह ताला जिंदगी अता करे, लेकिन अगर उनके माँ बाप फौत हो जाएं तो वो खुद जनाजा पढ़ा सकें, बच्चे फौत हो जाएं तो हम खुद उनको गुसल दे सकें। क्या हमारे बच्चे हमें गुसल दे सकते हैं? आज 2 घंटे दूर से भी बुलाना पड़े तो जाके लेके आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चियों को तो गुसल देना ही नहीं आता। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। हर वक्त मौलवी साहब और दर्स वालियाँ और आंटी साथ नहीं होती। दीन सबका है, मेरा आपका अकेला नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम भी तो हनीफ बनो। और देखिए हजरत इब्राहिम के पीछे भी बात हुई, हनीफियत का तज़किरा, फोकस्ड। इसका ऑपोजिट होता है जनीफ, डिस्ट्रैक्टेड, इधर उधर भटकने वाला। हनीफ कहते हैं वो शख्स जो ऐसे फोकस्ड हो सामने, बस उसकी नज़र में हर वक्त अल्लाह है। खुशियों में अल्लाह को याद रखता है, शादियों में अल्लाह को याद रखता है, गमों में अल्लाह को याद रखता है, बस उसकी ज़िंदगी में यही एक रंग होता है कि वो कहते हैं मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये बात करके मुझे आपको भी फोकस्ड होने का मशवरा दे दिया गया कि तुम भी इसी बात की फ़िक्र करो। आज आपके मेरे लिए यही क्राइटेरियन काफ़ी है। पीछे हमने देखा हज़रत याकूब ने अपने बच्चों को इसी बात की नसीहत की थी, यहाँ आप देखिए तो इब्राहिम की सिफत है। अगर आप गौर से सुन रहे हैं ना शुरू से पिछला सबक भी, तो दादा से लेकर पोते तक एक ही पैगाम है। बाप का जिक्र नहीं है हज़रत इसहाक की, यहाँ कोई नसीहत का जिक्र नहीं है। क्या पता चला कि पैगाम एक ही था। तरीका तरबियत इतना खूबसूरत था कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, और पोतों के बाद अगले अगले सब आगे चले जाते थे। और मज़े की बात देखिए कि हज़रत याकूब अपने बिस्तरे मर्ग पे अपने जिन बच्चों को वसीयत कर रहे हैं वो कौन से बच्चे हैं? जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ को कुएं में भी डाल दिया था, फिर तौबा भी कर ली थी, ठीक हो गए थे, इसके बावजूद बाप फिक्र कर रहे हैं कि कहीं हमारे बाजे फिर ना भटक जाएं, क्योंकि इंसान किसी लम्हे भी हिदायत की पगडंडी से उतर सकता है। और यहाँ मजे की बात देखिए कि कुरान हमें अंबिया के और उनकी औलादों के ये किस्से क्यों सुनाता है, ताकि हम अपनी इसलाह करें। मां कसब तुम फिक्र करो, खुशफहमियां रखो, ना नबियों के नाम बताएं, ना डेट ऑफ बर्थ बताई, कब पैदा हुए, कब मरे, किधर ताल्लुक था, क्या नहीं। बहुत कुरान में तो इस तरह के इशारे ही मिलते हैं, बस असल बात तो पता ही नहीं चलती। मिशन पैगाम एक था, हनीफ बनो। आज मुझे आपको भी यही मैसेज लोगों को देना है, इधर उधर भटकने की बजाय एक अल्लाह की ज़ात को देखो, फिर होगा। आज बहुत सारे लोग तबलीग के नाम पे इतनी लंबी कहानियां सुनाते हैं, किस्से, फिर रुलाते हैं, फिर हंसाते हैं, फिर लफाजी में खो जाते हैं, फिर काफिए हैं, फिर रदीफ हैं, अमल से नजरें उजल हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सबको कह दो। और ये जो कुल हुए ना, पूरी उम्मत को कहा जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए कहा जा रहा है। फिर आगे और थोड़ी सी इसकी वजाहत है, कुलू आमन्ना बिल्लाही, कह दीजिए हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, और जो नाजिल हुआ इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम पे, व याकूब और याकूब पे, व लसबात और उनकी औलादों पे। आप तरतीब से देख रहे हैं तो अंबिया कराम का तस्करा आ रहा है बार बार। पीछे भी आपने देखा कि हजरत इस्माइल का नाम इसहाक से पहले आया, ये नोट कीजिएगा नुक्ता। जब ये आयतें नाजिल हो रही थी ना, या जिस दौर की ये बात, उस वक़्त के यहूद को हजरत इस्माइल से बुगज़ नहीं था, और ये हजरत इस्माइल का नाम हमेशा इसहाक से पहले आता है। ये इस बात की दलील है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े थे और इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे थे, और बड़े ही बेटे को ज़बीहुल्ला किया गया था, आप जानते हैं। क्योंकि आज ज्यूस ये भी ख्याल देते हैं कि ज़बीहुल्ला हजरत इस्माइल नहीं थे बल्कि हजरत इसहाक थे। तो यहाँ तरतीब बार बार आ रही है। और यहाँ जो लफ्ज़ है ना असबात, तो औलाद, असबात जमा है सुब्त की। सुब्त का लफ्ज़ है ना असल में पोते के लिए आता है। आपने उर्दू में सुना होगा सिबते हुसैन, पोता। लेकिन अरबी जुबान में औलाद के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ जो आते हैं ना, उसमें एक लफ्ज़ तो औलाद भी है, वलद, औलाद कुरान में आता है, जनावा बच्चा। फिर इसी तरह जुर्रिया का लफ्ज़ भी आता है, छोटी औलाद को कहते हैं। फिर इसी तरह यहाँ जो लफ्ज़ है ना असबात, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा, सिप्त कहते हैं नवासों को, पोते को। पोते के लिए लफ्ज आते हैं ना हफीद, ये भी हम पढ़ेंगे कुरान पाक में इंशाल्लाह आगे आएगा। तो नवासा यानी बेटी का बच्चा, उसको सिप्त कहते हैं। और असबात के मानी लड़कियों की औलाद यानी नवासे या नवासियां हैं, फिर उसके बाद आगे उनके बच्चों के उनके बच्चे। और अमूमन कुरान पाक में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिब्त के लफ्ज़ को यहाँ लाया गया। इसी तरह आकिबा का लफ्ज़ औलाद के लिए आता है, नस्ल का लफ्ज़ आता है, हफदा का आता है। तो कुरान ने यहाँ लफ्ज़ सब्त कह सिब्त कहकर उनकी जनरेशन्स की तरफ भी इशारा किया गया। फिर फरमाए वमा होती है मूसा व ईसा, और जो कुछ दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, वमा होती है नबी यू नबी रबीहिम, और जो कुछ दिए गए नबी अपने रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के बीच में फ़र्क नहीं करते। फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुराद है, किसी को मानते और किसी को नहीं मानते। यहाँ इसे ये नहीं मुराद कि हम मूसा को अगर कलीमुल्ला मानते हैं तो सारों को कलीमुल्ला मानते हैं, नहीं। अल्लाह ने जो फजीलत दी थी वो है, लेकिन आपको पीछे बताया था ना कि यहूद सिर्फ हजरत मूसा को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते। नाउज़ बिल्ला हजरत ईसा तो उनकी नज़र में वलदुसिन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो बिल्कुल भी नहीं नबी मानते। क्रिश्चियंस ने किसको माना, मूसा को भी माना, ईसा को भी माना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। हम मुसलमान क्या हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम, और यही मैसेज सूरत के आखिर में भी आएगा। क्या पता चला कि नबियों में से किसी एक को मानना, किसी को छोड़ना, ये दुरुस्त तरीका नहीं। आज आप आयमे कराम पे भी ले लीजिए। बस लोग कहते हैं ना कि एक इमाम की बात मानो बाकियों की छोड़ दो, तो आप क्या कहें, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम, क्या अल्लाह बाकियों की कोशिशों को जाया कर देगा। चारों को मानो, हर एक की सच्चाइयों की तस्दीक करो। तो यहां फरमाया कि हम किसी के मानने में फ़र्क नहीं करेंगे, व नहनु लहू मुस्लिमून, ये लफ्ज़ मुस्लिमून काबिले गौर है, हम फिर भी उसी पर ईमान लाते हैं, यानी हमारा अपना नाम मुस्लिम है, सीधी सी बात है। फ़िरका वारियत का रद्द है, अल्लाह ताला आपको मुझे लफ्ज़ मुस्लिम से मोहब्बत दे दे। पीछे बात हो चुकी मुस्लिम कौन होता है, अब अगली आखिरी आयतों में मुस्लिम की तारीफ कराई गई। कौन होता है मुस्लिम, फ़ैन आमनु, पस अगर ईमान ले आओ, कैसे, बिमिसली मा आमन तुम बिही, यानी फिर ए मुसलमानों अगर वो, कौन, यहूद और नसारा, भी इसी तरह ईमान ले आए जैसे तुम ईमान लाए हो, फकद इहतदऊ, तो वो हिदायत पाएंगे। वइन तवल्लव, फिर अगर वो मुंह फेर लें, वइन नमा हुम फी शिकाक, तो वो तो मुखालफत में है, कोई बात नहीं डरो नहीं, फसयकफीकहुमुल्लाह, पस अन करीब बचा लेगा आपको उनसे अल्लाह। अक्सर आप देखिए एक जमीर होती है, इस लफ्ज में दो जमीरें हैं, का और हुम। अगर आप इसके तर्जमे में से का निकाल देंगे तो आपने फिर भी गलती की, और हुम का मानी छोड़ देंगे तो भी गलती की। क्या पता चला कि तुम अल्लाह सुबहाना ताला के इस पैगाम पर ईमान लाओ, सहाबा को मियार बनाया। पहला लफ्ज है आमनु वाहिद, यानी आमनु वो ईमान ले हैं, बेमिसली मा आमन तुम भी, जो ईमान तुम लाए, यानी सहाबा कराम के ईमान को दलील बनाया गया। नोट कीजिएगा, मेरे आपके लिए हिदायत का मीनारा कौन है? अल्लाह के नबी के बाद आपके सहाबा। बस लोग कहते हैं आज के दौर में सहाबा के नक्शे कदम पे चल नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, हिदायत पे होने का क्राइटेरियन क्या? सहाबा जैसी हिदायत हो। किसी से मैंने पूछा कि ऐसी कोई बात उनसे हो रही थी इसी टाइप की, कि किसी एक बुजुर्ग के साथ ताल्लुक जोड़ना पड़ता है, फिर उनका ईमान आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर वो आपके पास होंगे तो आपका खुद ही दिल करेगा इबादत करने को, और उनके जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जर पे लगाते हैं ना, तो किसी एक बुजुर्ग का बस पल्लू थाम ले तो फिर वो हिदायत पे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह की बात कर रही थी कि कुछ लोगों के अंदर से हिदायत निकलती है और दिस एंड दैट। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि सहाबन किसके साथ जुड़े थे ना, तो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से एक बड़ी रोशनी निकलती होती थी, जो आपको देखता था ना उसका नेकियां करने को दिल करता था। यानी उनकी बात का मतलब पता है, वो ये था कि हम सहाबा जैसे नहीं बन सकते, सॉरी, सहाबा तो नबी से एनर्जी लेते थे ना। तो मैंने कहा नबी सल्लम से एनर्जी मिलती थी तो ये बताइए कि अबू लहब को क्यों नहीं मिली, अबू तालिब को क्यों नहीं मिली, अब्दुल्ला बिन उबई के साथ क्या हो गया, वो तो बेचारा कलमा भी पढ़ चुका था, अबू जहल भी उसी बस्ती में रहता था। याद रखिए, अगर मैं और आप ये सोच लेना कि सहाबा जैसे हम और आप नहीं हो सकते, तो फिर ये आयत आपको कुरान से निकालनी पड़ेगी। जो अबू बकर की कुर्बानियां थी, आज के ना अबू बकर बनो, लोग कहते हैं जी हम अबू बकर नहीं है, भाई नहीं, आपको बनना पड़ेगा। आप अपने दौर के तकाजों के मुताबिक अबू बकर जैसा रोल अदा करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। उमर जैसे बने, अल्लाह आपको तौफीक देगा। सहाबा को बहुत ऊंचा समझकर, या फिर कुछ अल्लाह हिदायत दे बहुत ही नीचा समझ लेते हैं, उनकी गुस्ताखियां करने लग जाते हैं। सीधा सा तरीका यह है कि अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करो और तुम उनको मेयार बनाओ, तुम हिदायत पा जाओगे। और यकीन कीजिए कि हर सहाबा एक चमकता हुआ सितारा था। किसी नॉन मुस्लिम का एक जुमला मैंने पढ़ा कि दूसरी कौमों के पास एक लीडर होता है, कोई कोई एक उनका हीरो होता है। अमेरिकन के पास मसलन कोलंबस हीरो है, इधर नॉर्वे में भी कोई हीरो एक आधा इनका होगा। वो कहते हैं मुसलमानों के पास तो हीरोज की पूरी नर्सरियां हैं, हर सावी हीरो है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इसमें मेरे आपके लिए अमल की बात क्या है कि हमें अपने ईमान को हमेशा सहाबा के ईमान के साथ मैच करते रहना चाहिए, और अगर ना माने जिनकी बात हो रही है तो का कोई बात नहीं, हम फी शिकाक। शिकाक कहते हैं फट पड़ने को, उर्दू में आप सुनते हैं कब्र शक हो गई, मुखालफत, और जब मुखालफत होती है तो फिर ही बंदा फटता है ना, एक गिरोह दो गिरोहों में कब बदलता है, जब के वहां ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, फस यकफी का हुमुल्लाह, ये है वो आयत जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के शहादत के वक्त कुरान उनके सामने खुला था। यकीन करें, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि शहीद मासूम, जिस बंदे ने किसी को कुछ कभी कहा ही नहीं, ना तीर उठाए ना तलवारें उठाई, बिलवाइयों ने उनके साथ क्या हमला किया कि जिस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो को शहीद किया गया था, लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। मैं आपको हदीस का वाक्य पढ़ के सुना सकती हूँ जब आप कहें। उस वक्त कुरान उनके हाथ में था, और जब दुश्मनों ने उनके घर का हिसार तोड़ा, तीर चलाए, तो खून के कतरे कुरान के इन लफ्जों पर गिरे। आज भी टर्की में ये कुरान मौजूद है, आप जाके इस्तंबुल में देख सकते हैं। कहते हैं या तो हजरत उस्मान के खून के कतरे हैं, या उनकी बीवी, नाइला नाम था उसका, उसकी उंगलियां कट गई थी अपने शौहर को बचाते हुए, तो या बीवी का खून है या शौहर का खून है। आज भी अल्लाह ने इस लफ्ज पे कि फस यकफी का हुमुल्ला, पस अल्लाह अन करीब तुझे इनसे बचा लेगा, कि हजरत उस्मान 40 दिन के भूखे थे अपनी शहादत के वक्त, और सुबह उठ के बीवी को कहते हैं कि कुछ है खाने को, तो तो कहती है तो नहीं पता करती हूँ, था ही कुछ नहीं। कहा कोई बात नहीं, रोजे में हो। ने कहा इतनी थी कि बेहोश हो जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे बैठे होंगे आई तो उठे, तो कहा मैंने ख्वाब में नबी सल्लम को देखा है, और कहते हैं कि उस्मान आज का रोजा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे। और अभी ये बातें हो रही हैं कि घर का दरवाजा टूटता है और दुश्मनों ने तीर चला दिए, ये शहादतें कौन जानता है। फसा यकफी का हमला, अल्लाह ने उस्मान का रोजा तो जन्नतों में खुलवा दिया, वो तो शहीद हो गए। आप शहीद होने वालों को जो मर्जी कह लें, लेकिन कहने की बात यह है कि वह हुवस समीउल अलीम, वो खूब सुनता है, वो खूब जानता है। क्या ख्याल है उनको नहीं पता आप किन मुश्किलात में, आप किन हालात में, आप किन सूरत हाल कितनी नाजुक है। हर बंदे को अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हें इस्लाम पे अमल करते हुए जो मुश्किलात आती हैं, गम ना करो, लोग नहीं तुम्हारी मजबूरियां समझते, अल्लाह सुनता है। और लोगों को तुम्हारे बहाने नहीं पता, अल्लाह को पता है, ये भी मुराद है। जब आप लफ्ज अल्लाह के नाम के साथ समी आए ना, तो आप खुद पूछें अपने दिल से कैसा लग रहा है मुझे, खुशी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पे होने की अलामत है। अलीम है वो, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेरी हालत पता है, उसको पता है मैं कितनी पिसी हुई हूँ, मैं कितनी मजबूरियों में जकड़ी हुई हूँ, मेरा दिल कितना रोता है और मैं कितनी तड़प रखती हूँ। और अगर ये दो लफ्ज सुन के बंदा इधर उधर देखने लग जाए, अच्छा अल्लाह को तो सच पता है, दूसरों को मैं जो मर्जी कह दूँ, दूसरे जो मर्जी जान लें, तो ये खतरे की अलामत है। हम सबसे छुप सकते हैं, उससे नहीं छुप सकते जो असमी और अललीम है। और आप देखिए ईमान की बहस पर ये बातें की जा रही हैं, आज मेरे आपके लिए भी यही बात है कि फसा यकफी का हमुल्ला पे गौर करें,